उपस्थित प्रभु परमेश्वरजनों तथा भक्तिमती माताओं, कल के प्रसंग में आप लोगों को बतलाया जा रहा था कि आप तो यात्रा किए हैं, बाहर की यात्रा बहुत किए हैं, अभी करते हैं, परंतु अंतर यात्रा नहीं किया होगा तो अंतर यात्रा कीजिए। अंतर यात्रा क्या है? बाहर के जैसे घर से बाहर निकलते हो, मेन दरवाजा खोल करके बाहर जाते हो तो इसका नाम है बाहर की यात्रा। जो दरवाजा खोल करके अंदर आते हो इसका नाम है अंतर यात्रा। ऐसे जिस घर में तुम बैठे हो, अर्थात शरीर रूपी गृह में, नवद्वारे पूरे गृह, नवद्वार वाला एक घर है, एक घर में तुम बैठे हो अंतकरण रूपी घोषाला में। इस अंतकरण रूपी घोषाला से, सूक्ष्म शरीर से निकाल करके तुम नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों की तरफ जाते हो और संसार के विषयों का ग्रहण करके फिर भीतर आते हो कि नहीं, तो किस दरवाजे से आते हो? खिड़की से आते हो कि दरवाजे से आते हो? अरे जिस दरवाजा से तुम बाहर निकला उसी दरवाजा से भीतर भी आते हो। ये तुमको मालूम नहीं है तुम कहाँ गए थे, कैसे गए, ये मालूम नहीं करते हो। बाहर तुम कौन से दरवाजे से गए ये तुमको पता नहीं, और अंदर आए कहाँ से ये भी पता नहीं। हानी बात, तुम तो ऐसे बोलते हो कि हम संसार में घूमने गए थे और घर में आ गया, परंतु याद रखना जैसे घर में बाहर के रूम में तुम बैठते हो ऐसे भीतर के रूम में भी बैठे हो। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होता है, 17 तत्व होता है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। 17 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है। जीवात्मा रूपी पक्षी अपने रूम में बैठा है, अंतकरण। इस बात को छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या में बतलाया गया। दहर विद्या है जदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरी दहरम पुनरिगो भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् जद अंत तद अन्नष्टभ्यम तद बाबा विजिज्ञासितभ्यम। भगवती श्रुति कहती है यदि गुरु के पास कोई जिज्ञासु आता है, शिष्य आता है, जिज्ञासा करता है, तो उनको क्या उपदेश देना चाहिए? तो श्रुति कहती है उनको यही उपदेश दो, इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुनरिको भीष्म। इस शरीर का नाम है ब्रह्मपुर। तुम्हारा शरीर है ना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुर है। यह ब्रह्म का निवास है, ब्रह्म का निवास है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मपुर है। जैसे बाहर के मकानों का नाम रखते हो कि नहीं, जैसे कृष्ण निवास, राम निवास, श्याम निवास, है नहीं, रखते हो कि नहीं रखते हो? तो ऐसे ब्रह्म का निवास होने के कारण इसका नाम है ब्रह्म निवास। हरिद्वार में, वृंदावन में ऐसे मकानों का नाम है ब्रह्म निवास, कृष्ण निवास, है नहीं बात? राधा सदन, कृष्ण सदन, तो ये सब निवासों का जगह है। तो तुम्हारा शरीर का नाम क्या है? हाँ, ब्रह्मपुर, ब्रह्म निवास। इसमें ब्रह्म का निवास है, ब्रह्म का रहने की जगह है, ब्रह्म का रहने की जगह है। जदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर के अंदर एक छोटा सा आकाश है, छोटा सा आकाश है, उस आकाश का नाम हृदय आकाश है। जिस आकाश में ब्रह्म की उपलब्धि होती है ना, जिस आकाश में ब्रह्म की उपलब्धि होती है, उस आकाश का नाम है हृदय आकाश। हृदय से हृदय ऐसा आत्मा हृदय ऐसा आत्मा तुम्हारे तुम कहाँ रहते हो का हृदय हृदय में दशांगुलम तिष्ठते नाभि से ऊपर दशांगुल माप करके देखो हृदय आकाश में रहते हो जिस हृदय आकाश में तुम रहते हो आकाश को तुम जानते ही नहीं अब इसको खोज करके मैं भीतर जाकर कहाँ कौन से बेडरूम में सोता हूँ बैठता हूँ तुम्हारा बेडरूम भीतर है कि बाहर है तुम तो बाहर सोते हो भीतर नहीं देखते हो सुषुप्ति अवस्था में तुम कहाँ जाते हो सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में तुम कहाँ जाकर सोते हो कभी हिजाब लगाया जिस आकाश में जिस हृदय आकाश में तुम निवास करते हो हृदय आकाश को तुम जानते नहीं तो इसको कहते दहर आकाश दहरम दहर आकाश माने दहर माने बहुत से छोटा अंगुष्ठ प्रमाण तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है अंगुष्ठ मात्र तिष्ठति हृदय आकाश में अंगुष्ठ मात्र हृदय आकाश के अंदर एक छोटा सा आकाश है जिसका नाम है दहर आकाश उसमें जो रहता है उसको खोज करो उसको ढूंढो तो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाओगे कि अंदर जाओगे इसीलिए इसका नाम अंतर यात्रा इसके भीतर जाओ भगवान कहाँ बोलता है भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को निमित्त बना करके बोला कि नहीं ईश्वर कहाँ रहता है एक राजा को राजा सत्संग में आते थे रोज रोज सत्संग में आते थे तो महात्मा लोग इसको बोला ईश्वर का भजन करो ईश्वर का साक्षात्कार करोगे तो भवबंधन से छूट जाओगे तो अब राजा के मन में एक दिन सोते सोते आया कि ईश्वर का भजन करे तो कैसे करे कहाँ रहता है ईश्वर ईश्वर कहाँ रहता है ये मन में आया ईश्वर क्या करता है ईश्वर क्या खाता है ईश्वर सोता जागता कि नहीं है हंसता रोता कि नहीं है हमारे जैसे हंसता भी होगा रोता भी होगा खाता भी होगा पीता भी होगा रहने की जगह भी होगा ऐसे कई प्रश्न उसके मन में आया रात भर उसको नींद नहीं आई क्यों जहां चिंता होती है ना जिज्ञासा होती है वो तब जिज्ञासा की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा याद रखना अब प्रातःकाल फिर सत्संग में गया सत्संग में जब गया सत्संग सुना वही महात्मा बोले ईश्वर का भजन करो ईश्वर का दर्शन करो संसार के बंधन से छूट जाओ संसार के बंधन से छूट जाओ अब यहां आया मन सिंहासन पर बैठा सिंहासन पर बैठने के बाद मंत्री आया नमस्कार किया मंत्री से कहा महाराज ये तो बताओ ये महात्मा जो बोलता ईश्वर का भजन करो ईश्वर का भजन करो कहाँ जाकर भजन करे ईश्वर कहाँ रहता है ईश्वर क्या करता है ईश्वर क्या खाता है ईश्वर क्या खाता है ईश्वर हंसता रोता है कि नहीं आप ही बताओ मंत्री जी ने कहा राजन तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है अत्यंत गंभीर है इसका उत्तर तो कोई अध्यात्म विद्या के जो पारंगत होगा वही देगा हम नहीं दे सकते क्योंकि जानता है कि राजा द्वारा इतना आस्तिक नहीं है और उतना नास्तिक भी नहीं है आस्तिक और नास्तिक दोनों के बीच में मंदाधिकारी है अधिकारी तो है जिज्ञासा कर रहा है तो जिज्ञासु अधिकारी है पर तीव्र जिज्ञासा नहीं है मंद जिज्ञासा मंद अधिकारी है इसको सीधा जवाब देंगे इसका कदर नहीं होगा इसको सीधा जवाब देंगे इसका कदर नहीं होगा कदर के लिए कीमत अदा करना चाहिए जब जब किसी वस्तु का कीमत तुम दोगे नहीं पर्याप्त तो तुम उस वस्तु का कदर नहीं करोगे राजा ने या मंत्री ने सोचा सीधा सीधा जवाब दे देंगे तो इसका कीमत नहीं होगा मंत्री ने कहा महाराज इसका तो उत्तर जो है ना कोई अध्यात्म विद्या के पारंगत व्यक्ति ही दे सकते, मैं नहीं दे सकता। राजा के मन में हुआ, वाह हमारा प्रश्न कितना कठिन है, गंभीर है, गूढ़ है, हमारे इतना चालाक मंत्री भी दे नहीं सकता, ठीक है इसको उत्तर देने वाला कोई विद्वान हो आप ढूंढ करके ले आओ, उसको हमने 500 रुपये इनाम दे देंगे। मंत्री ने सोचा ठीक है, कम से कम 500 तो कीमत दिया। मंत्री चले गए, घूम फिर करके आ गया, लाया मंत्री जी प्रश्न के उत्तर देने वाला को विद्वान लाया। बोले नहीं, क्यों? बोले हमारे राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है, हमारे राज्य में नहीं है, आपका प्रश्न इतना गूढ़ है इसका उत्तर देने वाला हमारे राज्य में, इसीलिए बाहर राज्य में जाना पड़ेगा, जाओ बाहर राज्य में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, ढूंढ करके लाओ, मेरा प्रश्न का जो जवाब दे देगा इसको हमने इतना आधा राज्य दे देंगे। मंत्री जी ने सोचा कुछ कीमत तो आया, कुछ कीमत तो प्रश्न का उत्तर में आया, 2-7 दिन 5 दिन 10 दिन घूम फिर करके फिर चले आया। मंत्री जी ने कहा महाराज ये हमारे राज्य के अड़ोस पड़ोस के राज्य में भी ऐसा कोई विद्वान हमको नहीं मिला, तो कहाँ मिलेगा? ये हो सकता है काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, नैमिषारण्य जाओ, या बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थी बैठते हैं उनको अंदर ये प्रश्न का उत्तर मिल सकते हैं। राजा ने कहा जाओ कहें भी मिल जाए ले आओ, मैं पूरा राज्य दे दूंगा, मेरे प्रश्नों का जो जवाब दे देगा। यह सुनकर के मंत्री ने सोचा अब इसका कीमत आया है, ऐसा विचार करके मंत्री चले गए, घोड़ा में बैठ कर बैठा, काशी जाएंगे, वहां गंगा स्नान करेंगे, विश्वनाथ दर्शन करेंगे और किसी एक विद्वान को लाएंगे, क्यों सिद्धानम सदनम काशी विभुधानम निकेतनम, काशी क्या चीज है, सिद्धियों का घर है, विद्वानों का निवास है, वहां तो कोई ना कोई विद्वान मिलेगा, पकड़ करके ले आएंगे। काशी कब गए? काशी गए कि नहीं? सिद्धानम सदनम काशी विभुधानम निकेतनम भवनम वैभवानम वैभवानम गृहम अध्यात्म विद्यानम, अध्यात्म विद्या का वो घर है, घर घर में सरस्वती नृत्य करती है काशी में, ऐसे काशी में जाकर के एक विद्वान को लाएंगे। मंत्री जी चल पड़े, 2-7 दिन जब जाया तो एक जगह में दोपहर का समय था, पेड़ के नीचे घोड़ा को बांध करके सुस्ताने लगा, इतना में किशन हाल छोड़ करके उनसे मिलने आया, उनसे मिलने मतलब रोटी खाने के लिए वो पेड़ के नीचे आया, तो रोटी खाने की तैयारी कर रहा था, इतना में किशन के मन में आया कोई आगंतुक आया है, कोई आगंतुक अतिथि आया है, उसको भी ये 2 रोटी खिला दो। उन्होंने कहा आओ प्रेमी रोटी खाओ, क्यों हमारे यहाँ अतिथि की सेवा करना महत्व होता है कि नहीं, घर में कोई भी आवे पहले उनको पूछो, उनको खिलाओ पिलाओ, पानी दियो, नाश्ता दियो, जो भी देना है दियो, शांत हो जाए, फिर पूछना कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, परंतु यहाँ से पहले पूछ लेते कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, यहाँ क्यों मनने आए हो, ऐसे प्रश्न हमारे यहाँ होते हैं, पर पहले जमाना में ये नहीं था, घर में आए हुए कोई भी अनजान व्यक्ति को अतिथि मान करके उसकी सेवा करते थे, ऐसा है। अतिथि जैसे भग्न आसो गृहात प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, जिसके घर में अतिथि आया और निराश होकर चला गया तो गृहस्थ का पुण्य लेकर के अपना पाप छोड़ करके चले जाते। अतिथि सर्वत्र गुरु हो, अतिथि सर्वत्र गुरु है, कितना भी पापी तापी संता भी क्यों ना हो, वैश्यदेव के समय बलि वैश्यदेव के समय आता है तो शास्त्रकार कहते उसको भगवान नारायण साक्षात नारायण समझ करके उसको सेवा करो। कोई किसान के गांव में सत्संग 24 घंटा माने 12 महीना सत्संग होता है, नित्य निरंतर सत्संग होता है, वही सब जानते हैं गृहस्थ आश्रम का धर्म। जैसे आपको मालूम है कि कठोपनिषद से सुने हो, कठोपनिषद नसिकेता नाम के जो है ना ब्राह्मण कुमार जमराज के दरवाजे में पहुंचा, तीन दिन तक खाए नहीं और पड़ा रहा। जमराज बाहर कहीं गया था। जमराज जब आए घर के घर वालों ने कहा तुम्हारे घर में एक ब्राह्मण कुमार अतिथि विश्वनर अग्नि बन करके आए हुए हैं, इसको शांति करो, पद्य दो, अर्घ्य दो, अर्चना करो, पूजा करो, इनको शांत करो, नहीं तो तुम्हारे घर जला देगा, भस्म कर देगा, तुम्हारे दान पुण्य विद्या सब नष्ट कर देगा। ये ब्राह्मण अतिथि यदि भूखा रह गया हो अभिशाप देता हो। जमराज भागे भागे गया, मंत्री से कहा लाओ पद्य लाओ, अर्घ्य लाओ, अर्चना लाओ, पद्य अर्घ्य ला करके उनकी पूजा की और माफी मांगते हुए कहा हमको माफी माफ कर देना, मैं तीन रात्रि तक घर में नहीं था, आप तीन रात्रि तक हमारे घर में भूखा पड़ा रहा, इसीलिए मेरे को प्रत्यवाय रूपी जो दोष लगा है ये दोष से मेरे मुक्त कर दीजिए तीन रात्रि तक। अब इतने बड़े जमराज जिसके डर के मार से सारा संसार कांपता है, वही जमराज जो एक पांच साल के बालक के अतिथि बालक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, बताओ अतिथि की सेवा का कितना महत्व है। इस बात को बार बार सुना था कि वो किशन ने, इसीलिए उसने सोचा मैं रोटी खा रहा हूं पेड़ के नीचे बैठ करके, हमारे पास में कोई व्यक्ति आया वो भूखा रहेगा, ये कैसे हो सकता है, आओ प्रेमी से कहा आओ रोटी खाओ। उसको तो भूख लगी थी, किसको, मंत्री को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो उसने रोटी भी खाया प्यास भी बुझाया। बाद में वो किशन पूछते तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कौन हो, खाने के बाद में पूछा, पहले नहीं याद रखना, अतिथि सेवा हो गया, संतुष्ट हो गया, आराम हो गया। देखो कि हमारा जो प्राणवायु है ना, प्राणवायु जब भूख होते हैं ना ऊर्ध्वगामी होता है, तो प्राणवायु को शांत करने के लिए अन्न चाहिए। ज्यो ज्यो अन्न खाओगे त्यो त्यो तुम्हारा प्राण शांत होता चला जाएगा, अग्नि शांत होता चला जाएगा। जठर अग्नि है ना, जठर अग्नि प्रज्वलित होते ना प्राण वायु ऊर्ध्वगति हो जाती है। आप इसको प्राण को कहते हैं ना, भूख में मारे मेरे प्राण निकल रहा है, मेरे को खाने दे, कहते कि नहीं कहते, भूख लग गया, भूख लग गया, जो खाने दो खाने दो खाने दो। तो किशन पूछते हैं आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कौन हो आप, कहा मैं तो मंत्री हूं, फलाना जगह से आया हूं, फलाना काशी जा रहा हूं। तो उसने पूछा काशी क्यों जा रहे हो, क्या बात है, दर्शन करने जा रहे विश्वनाथ का, बोले नहीं दर्शन तो हो जाएगा पर मैं जा रहा हूं एक विद्वान को ढूंढने के लिए। बोले कैसा विद्वान, बोले हमारे राजा के मन में चार पांच प्रश्न उदय हुआ है, प्रश्नों का जो जवाब देगा तो महाराज जो है ना उसको राज्य, उस प्रश्न के उत्तर में राज्य को उनका इनाम के रूप में दे देगा। तो क्या है प्रश्न हमको सुनाओ, तो तू सुनकर के क्या करेगा, बड़े बड़े विद्वानों प्रश्नों का जवाब नहीं दे देगा और तू तो हाल जोतता है किसान है, तू क्या जवाब देगा। अरे भाई जवाब देना सुन तो सकता हूं ना, जवाब दो दे पाऊं कि नहीं पे वो बात दूसरी है, परंतु प्रश्न तो सुनाओ। अरे उसने सोचा भाई इसके रोटी खाया, हाँ रोटी खाया, आप ये कम से कम तो प्रश्न तो पूछ रहा है तो कह दो, क्यों अंधे के सामने रोना अपने नैना खोना, अंधे के सामने रोने से क्या भरा, वो किशन है हाल जोतता है, हाल के विषय में जानेगा या आध्यात्मिक विषय में क्या जानेगा, फिर भी पीछे पड़ा तो सुना दो। तो उसने कहा हमारे राजा के मन में आया कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर क्या खाता है, ईश्वर हंसता रोता कि नहीं। बोले यही प्रश्न है, इसके लिए तुम कैसे जा रहे हो, बोले तो इसका तो हमारे गांव के बच्चे बच्चे जानता ईश्वर कहाँ रहता है क्या रहता है, क्यों हमारे गांव में सत्संग होता है, बसा सत्संग में से उपनिषदों का, वेद का, गीता का, रामायण का कथा होती है, सब हमको मालूम है। तेरे को मालूम है? बोला हाँ। तो बता दे मेरे को, तेरे को बताने से क्या मिलेगा? राजा को बताएंगे राज्य मिलेगा, तेरे बताने से क्या मिलेगा? अरे मंत्री को बताने से क्या मिलेगा? जब राजा को बताएंगे राजा के तरफ से राज्य मिलेगा, राज्य प्राप्ति होगी, और इसके बताने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। किशन ने कहा मेरे को ले चल राजा के पास। किशन ने सोचा या मंत्री ने सोचा कि उत्पटक बात करता है, हो ना हो बता दे, चलो ले चलते क्या है। अभी तो चार पांच दिन हुआ जात्र में आया, हमको तो छह महीना का समय दिया राजा ने, छह महीने के अंदर लाओ विद्वान। ले चला, ले करके राजमहल में पहुंचा, जय हो महाराज जय हो। अरे मंत्री जल्दी आ गया, क्या बात है विद्वान लाए? बोला हाँ। कहाँ वो बैठा है? तो किशन ने पगड़ी बांधा हुआ था, कंधे पर एक गमछा था, नंगे पैर बैठा है। कहाँ विद्वान है? वो बैठा है। अरे मंत्री जी आपका दिमाग का तो खराब नहीं हो गया है? ये हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा? आपने इतना दिन ढूंढा है, कोई विद्वान ही नहीं मिला, और एक किसान को हलवा को पकड़ करके ले आया कि मेरा प्रश्न का उत्तर देगा? आपको तो रिटायर कर देना चाहिए था मेरे को पहले से। क्यों आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? दो साल बाद जब सुनाया, मंत्री जी ने कहा महाराज आपने हमको समझ दिया, छह महीना अभी दस दिन पूरा हुआ, अभी तो बहुत दिन बाकी है, और किसान कहता है कि मैं उत्तर दूंगा, और आप उनसे प्रश्न पूछिए तो सही, अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता निकाल देंगे, कौन सा खर्चा होता हमारा है। यह सुनकर के राजा के अंदर आया, चलो पूछ तो ले भी। किशन सब सुन रहा था बीच से बैठे बैठे, सब राजा और मंत्री का संवाद, राजा और मंत्री का जो हो रहा है ना संग बातचीत, ये सब किशन सुन रहा था। राजा अभिमान के साथ आकर के सिंहासन पर बैठा और किशन से पूछा क्या तुम मेरा प्रश्न का उत्तर देंगे? किशन हाथ जोड़ करके महाराज आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ईश्वर कहाँ रहता है? ये सबके प्रश्न आए हो, ढूंढते हो ना ईश्वर को, ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो? इधर से इधर, इधर से उधर, उधर वो जाल में मच्छी फंसते है ना, जाल फेंकते है ना जलाशय में, फंस करके मछली इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भागता है सब। भगता है कि नहीं? निकल नहीं पाते। ऐसे हम लोग ईश्वर के ढूंढने के लिए कोई पूरब जाता है, कहीं पश्चिम जाता है, कहीं उत्तर जाता है, कहीं दक्षिण जाता है, कोई आकाश जाता है, कहीं पतल जाता है, घूमता है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है। तो इसी प्रकार राजा ने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है? मंत्री ने कहा बस इतना सा प्रश्न है, आपने जीवन में कभी सत्संग किया नहीं लगता है, यदि सत्संग करते तो ऐसा प्रश्न ही आप नहीं करते, ईश्वर कहाँ नहीं रहता ऐसा प्रश्न करते, ईश्वर कहाँ नहीं रहता ये प्रश्न करते आप। आपने गीता सुना कभी? गीता में ईश्वर कहाँ रहते? भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को निमित्त बना करके सबके लिए कहा ईश्वर हो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा निमाया। भगवान कहाँ रहता है? सर्वभूतानाम केवल आपके अंदर रहते ऐसा नहीं, सर्वभूतान ईश्वर हो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय इसमें रहता है। भगवान खुद कहते हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित हम आदिश मध्यम से भूता नाम अंत ही बसो। भगवान स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में, जीवों की आत्मा के रूप में, सर्वभूताशय सर्वस्त भूतों के अंतरात्मा के रूप में स्थित हूं। आसमानी अंतकरण। आम आदि से मध्यम से भूतानाम अंत सब मैं आदि भूतों के आदि अंतर मध्यम मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये आपने गीता नहीं सुना? गीता के बाद छोड़िए, आप उपनिषद की सुना कभी? ईजावश्रम इदम सर्वम सत् किंच जगत्याम जगत तेन मां गृजा कश्य सिद्धनम ईश्वरो सर्वभूतानाम। और यहाँ ईशावाश्रम इदम सर्वम सत् किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिधा मां गृजा कश्य सिद्धनम। जगह ईश्वर ईशा वैश्यम इदम सर्वम इदम प्रदृश्यमान नाम रूपात्मक जगत ईशा ईश्वरे न वैश्यम आच्छादितम। हाँ, सारे संसार में ईश्वर व्याप्त है। जैसे जल के अंदर शीतलता व्याप्त है, अग्नि के अंदर उष्णता व्याप्त है, वायु के अंदर जो है अनुष्ण शीत स्पर्श वायु व्याप्त है, जैसे जल में मधुरता व्याप्त है, ऐसे सारे संसार में ईश्वर व्याप्त है। अग्नि में जल में अग्नि का व्याप्त है ना, जल में जब अग्नि जाती है अग्नि व्याप्त हो जाता है कि नहीं? अग्नि के अंदर दाई का शक्ति व्याप्त है कि नहीं? ऐसे ईश्वर सर्व जगत में अग्नि अग्नि जथई का भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्य। हे राजन, जैसे अग्नि भुवन नल के अंदर प्रविष्ट होकर के तत्तद्रूप हो गया है, ऐसे परमात्मा भुवन नल के अंदर तत्तद्रूप में भास रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है परमात्मा न हो। ऐसा कोई जगह? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। क्या आपने कभी नहीं सुना? जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत के शिखर पर विष्णु, अग्नि के ज्वाला में विष्णु, ऐसा कोई जगह बताओ जहां भगवान नहीं हो? हाँ, कोई जगह? कहीं नरक में भगवान आएगी नहीं? नरक में है? अच्छा, क्या पाप किया भगवान ने तो कैसे नरक में गया? वैभगत्वात् भगवान सर्वत्र है। वैभव सत्ता स्वर्ग नरक आपके लिए हमारे लिए है, याद रखना। जो पाप पुण्य करता है उसके लिए स्वर्ग नरक, जो पाप पुण्य नहीं करता है उसके लिए स्वर्ग नरक नहीं है, सब समान है। क्यों? जेल का नाम है कैदी है और उसको पहरा देने वाला सिपाही है कि नहीं? तो सिपाही दंड भोगता है कि कैदी दंड भोगता है? क्यों? सिपाही क्यों नहीं भोगता है? क्यों? उसने पाप किया है नहीं, चोरी किया है नहीं, डकैती किया है नहीं, लूटा नहीं, लापटा नहीं, तो क्यों करेगा? तो जैसे वो कैद खाना में कैदी दंड भोगता है, ऐसे परमात्मा नहीं है। परमात्मा व्यापक है, सब जगह में है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। अगर स्वर्ग में न हो, नरक में न हो, तो परमात्मा का व्यापकता सिद्ध नहीं होगा। नरक में जगह ना हो तो नारकीय जीव जो नरक में रहता है, दुख भोग रहा है, उसके उनको जानकारी भगवान को कैसे होगा? भगवान का ज्ञाता है कि नहीं? सर्वज्ञ है कि नहीं? सर्वविद है कि नहीं? सामान्य रूप में परमात्मा सब जानता है, और व्यापक रूप में भी परमात्मा, विशेष रूप में भी परमात्मा सबको जानता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद जैसे ज्ञान वयम तब तस्मादित ब्रह्म नाम रूपम अन्नम से जायते, मुंडक उपनिषद में मंत्र आता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद जैसे ज्ञान वयम तब, ये सर्वज्ञ माने सामान्य रूपे न सबको जानता है, सर्वज्ञ है। अब विशेष रूप में सबको जानता है सर्वविद है। सर्वज्ञ सर्व जैसे ज्ञान वयम तब, जिस परमात्मा के ज्ञान रूपी तप है ज्ञान वयम, ज्ञान अविकार वृत्तियात्मक जो ज्ञान है, ये ज्ञान रूप जो तप है, ये तप परमात्मा के क्या है? ऐसा कोई जगह हो कि परमात्मा नरक में नहीं है तो हमारा परमात्मा व्यापक नहीं होगा। स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में है, नरक में नहीं है, नरक में है, स्वर्ग में नहीं, ऐसा नहीं। जैसे जल के अंदर जो आना शीतलता व्याप्त है कि नहीं? जैसे जल के अंदर शीतलता व्याप्त है, अग्नि के अंदर उष्णता व्याप्त है, नमक के अंदर खारापन व्याप्त है, शक्कर के अंदर मीठापन व्याप्त है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, याद रखना। हे राजन, तुमने परमात्मा के विषय में सुना ही नहीं। हमारे गांव में ऐसी कथा होती है, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हे अर्जुन, परमात्मा सर्वत्र सब में रहता है। वायु जथैक भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्व एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। एक ही देव माने परमात्मा, द्वितुनाथ देव हो, प्रकाशमय है, स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ऐसे कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर परमात्मा चेतन रूप में विद्यमान न हो। हे राजन, आज तुम ईश्वर के विषय में पूछा है, ईश्वर कहाँ रहता है, ऐसे बताओ ईश्वर कहाँ नहीं रहता है, ऐसा कोई जगह बताओ। यदि आपसे कोई पूछे ईश्वर कहाँ है, तो आप बोलो ईश्वर कहाँ नहीं है, बताओ ऐसा कोई जगह है ईश्वर नहीं है। कीड़े मकोड़ों के अंदर भी ईश्वर चेतन रूप में विद्यमान आएगी नहीं, वृक्षलता आदि के अंदर आएगी नहीं परमात्मा। तो फिर जो परमात्मा जब वृक्षलता स्थावर जंगम सब में रहता है, तो तुम्हारे अंदर भी वही विश्व ईश्वर विद्यमान है। तुम जो प्रश्न कर रहे हो ना हे राजन, ये तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा वही ईश्वर विद्यमान है, बोलो कहाँ नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, प्रश्न का उत्तर तो एक तो मिल गया, अभी दूसरा प्रश्न है, अब बताओ। बोले दूसरा क्या है, ईश्वर क्या करता है। बोले राजन, तेरे को प्रश्न करने भी अभी आया नहीं, प्रश्न करने का ढंग सीख पहले। प्रश्न कौन करता है, उत्तर कौन देता है। प्रश्न करने वाला जिज्ञासु होता है, शिष्य होता है, और प्रश्न का उत्तर देने वाला आचार्य होता है, गुरु होता है। बोल तू कौन है, गुरु है कि आचार्य शिष्य है, जिज्ञासु है। यदि तुझे प्रश्न का प्रश्न करना है, तो प्रश्न करने का ढंग सीख। प्रश्न शिष्य करता है, जिज्ञासु करता है। तो सिंहासन के उतर जा, सिंहासन के उतर करके हाथ जोड़ करके मेरे सामने बैठ। शिष्य का उत्तर देने वाला कौन होता है, गुरु होता है कि नहीं। गुरु का स्थान किधर होता है, ऊपर होता है कि नहीं, और शिष्य का स्थान जा उतर नीचे। राजा ने कहा अब क्या किया जाए, जा उखल में जो है ना शेर दिया, और मुसल से डरने से क्या होगा, उखल होता है ना, क्या तुमने शेर डाले दिया तो मुसल से डरने से क्या होता, कूटना तो पड़ेगा ना। अभी जब हमने प्रश्न किया है, इसका उत्तर तो लेना है। तो राजा सिंहासन के उतर करके नीचे आया, और किशन जाकर बैठ गया सिंहासन पर। तब राजा ने कहा अभी उत्तर दीजिए। बोला अभी नहीं, अभी भी तेरे को प्रश्न करने का ढंग नहीं आया। बोले कैसा, बोला हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके कहना गुरुदेव हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राजा जो है ना सोचा अभी तक उत्तर तो चाहिए, तब उसने घुटना टेक करके हाथ जोड़ करके जैसे भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है कि नहीं, गीता के फोटो देखते हो कि नहीं देखते हो, अर्जुन कैसे खड़ा है, घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं। कार्पण्या दोषो वद स्वभाव हम पृछा में तो हम धर्म सम्मूढ़ राजस्व ऐसा निश्चित ब्रूही स्तन में शिष्यस्ते हम साधि माम तो हम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मैं से आपसे पूछता हूँ, आप मेरे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब राजा ने ऐसा किया तो शिष्य ने कहा, अर्थात किशन ने कहा वही करता है रे बेटा। बोले उत्तर तो मैं दे दिया, किशन ने बोला उत्तर दिया, हमको समझ में नहीं आया, यही करता है। शिष्य को राजा को वो बना दिया शिष्य के जगह में, क्या बनाया, रंकम करोति राजानाम, राजानाम रंकम ही बस, धनी न निर्धनम एवं निर्धनम धनी नहीं बस। राजा को रंग का बना देता, किशन को चरणों में खड़ा कर देता एक मिनट के अंदर। राजा को कहां खड़ा कर दिया, राजा कहां बैठा है, कहां से प्रश्न कर रहा है। अरे किशन के चरणों में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके राजा किशन से प्रश्न प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, यही करता है। रंगम करो दी राजा राम, एक रंग का है किशन ने उसको राजा बना दिया। राजा नाम रंगम है वैसा, और राजा को किसान के सामने हाथ जोड़ा करके खड़ा कर दिया, यही करता है। एक क्षण के अंदर जो है ना बदल दिया सारा संसार को, समझे क्या नहीं। जो आज जो ऐसे ही समझ रहे ना, ये तो श्लोक है, ये तो समाज में है, सबके जीवन में घटता है ये। कभी आज करोड़पति है तो काल लखपति होता है, परसों है ना रोडपति होता है कि नहीं होता है, और रोडपति भी करोड़पति हो जाता है। तो रंगम करोती राजा नाम, राजा को रंग बना देता है, गरीब बना देता है, कांगाल बना देता है, मांगने वाला बना देता है, और मांगने वाला को राजा बना देता है, करोड़पति बना देता है। निर्जन हम धनी नाम ही बस, निर्जन को धनी बना देता है, धनी को निर्धन बना देता, यही करते राजन, ईश्वर यही करता है। राजा ने कहा बढ़िया उत्तर मिल गया भाई, प्रश्न का उत्तर तो बहुत बढ़िया हो गया कि नहीं। राजा को हाथ जोड़ करके खड़ा कर दिया किशन के चरणों में, एक क्षण लगा नहीं। जो राजा अहंकार के साथ कहते थे ये मेरा प्रश्नों का क्या जवाब देगा, वही किशन गुरु बन करके सिंहासन पर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न का है, क्या है तेरा तीसरा प्रश्न, राजा क्या या भगवान क्या करता है, क्या खाता है, किम करो थी किम खाता थी, खाता क्या राजन, ईश्वर क्या खाता है, मैं बताऊं। बोले बताओ, तेरे जैसी अभिमानियों का अभिमान खाता है। तू जो अभिमान करके अगर थप थपा करके अगर सिंहासन पर बैठा बैठ करके कहा था किशन क्या जवाब देगा मंत्री को, तो मंत्री के ऊपर तो नाराज हो रहा था, किशन ईश्वर ही खाता है। अभिमानियों का अभिमान खाता है, जो अभिमान करता है अभिमान खाता है। इसीलिए हमारे संतों लोग बोलते हैं देखो अभिमान करो नहीं, स्वाभिमान त्यागो नहीं, स्वाभिमान रखो पर अभिमान नहीं करो। अभिमान करोगे तो भगवान अभिमान को खाने में देर नहीं लगता है। अमानित्य बनो, अमानित्यम अदम्बित्यम अहिंसा शांति रार्धवम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये कहाँ, अरे गीता की तरफ अध्याय में आएगी नहीं, अब गीता स्वाध्याय है सब पहले बात। अमानित्यम अदम्बित्यम अहिंसा शांति रार्धवम आचार्य उपासनम सोहसम स्थैर्य आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थ से वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषान दर्शन असक्ति रनविशंग पुत्र धारा गृह। ये भगवान कहते मुझ क्षेत्रज्ञ स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, ये 20 साधन तुम्हारे लिए रखा है, 20 साधनों में से कोई साधन अपनाओ। इसमें 20 साधन ज्ञान, इसको भगवान ने ज्ञान कह दिया, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम जदत्वन्यथा, ये 20 साधन का नाम ज्ञान रखा है। तो ज्ञान क्यों कहा, ज्ञान के साधन होने से ज्ञान है, ज्ञान नहीं है हमारे तो ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है, ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है। अधम्बित तो ज्ञान नहीं है परंतु ज्ञान का साधनों से ज्ञान है। ऐसे ही अनिवार्य ज्ञानी न तदज्ञानम, ज्ञाने उस अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान न तदज्ञानम जैसम नाशितम आत्मा न, जिसके अज्ञान ज्ञान के द्वारा नाश हो गया वही व्यक्ति जाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता। और तू जो कहा ईश्वर क्या खाता है, अभिमानियों का अभिमान खाता है, याद रखना। निरहंकारियों का निरहंकार नहीं खाते, अहंकारियों का अहंकार खाते ठीक है, परंतु और बताओ। क्या मेरा एक चौथा प्रश्न है, क्या प्रश्न है भूल गया, ईश्वर का हो गया, ईश्वर हंसता रोता कब, ईश्वर हंसता कि नहीं रोता कि नहीं रोता है, ईश्वर हंसता कब है तो देखो, जीव जब माता के उदर पूर्वी गुफा में प्रवेश करता है, माता के पेट में आता है, तब जठराग्नि की ज्वाला से जलता है, उलट पुलट होता रहता है, माता तो खट्टा मीठा आदि खाती है, इससे पीड़ा कोमल चर्म को पीड़ा पहुंचती है, तो इधर उधर उलटता पुलटता है, तो माता को लगता है कि बड़ा बच्चा उलट रहा है पुलट रहा है, नहीं दुखी हो रहा हो, इसीलिए कहते ना खट्टा मीठा आदि कड़ुआ मिर्ची आदि गर्भावस्था में नहीं खाना सही, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो बच्चा जब वहां आता है तो जन्मांतरीय कर्मों का फल जठराग्नि के द्वारा भोगता है, उस समय नाना प्रकार की पीड़ा होती है, ये नरक कुंड एक प्रकार का बतलाया गया, नरक कुंड, वो नरक कुंड में पढ़ करके जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ही परमात्मा एक बार मेरे को इस ध्वनि से निकाल दो, क्योंकि उस समय उसको क्या होता है, पूर्व ध्वनि सहस्र, पूर्वधनी सहस्र ने दृष्टम शैव तथा आहार अभिविधा भुक्ता पिता नाना अभिधा स्थाना जातशैव मितशैव उभयशैव पुनः पुनः जन्मयाज्ञ करिष्यति तेनाहम फलभोगिनाम जनजन्य प्रमुच्यम तत्प्रवज्य नारायणम अशुभभय कर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। जीव जब माता के उधर में आते हैं ना, पूर्वधोनी सहस्राणी, पूर्व ध्वनियों का, पूर्व पूर्व हजारों ध्वनियों का दृश्य उसके सामने आता, कहते ये गर्भ उपनिषद की बात आयो, पूर्व ध्वनि सहस्राणी, हजारों ध्वनियों का दृश्य उसके सामने, रील जैसे अभी टीवी पे देखते हो कि नहीं, रील सीरियल देखते हो कि नहीं, ऐसे दृश्य सामने आता जीव के, पूर्व ध्वनि सहस्राणी, एक ध्वनि का नहीं है, दो ध्वनि का नहीं है, हजारों ध्वनियों का दृश्य उसके सामने, किन किन ध्वनियों में तुम गए, क्या क्या माता, कैसे कैसे माता मिली, कैसे कैसे भोग मिला, कैसे मैं सुख मिला दुख मिला, सारा दृश्य तुम्हारे सामने आया। पूर्व ध्वनि सहस्राणी दृष्टम से तत्वमय आहारा विविधा भुक्ता नाना विकास तना नाना प्रकार के स्तनपान किया है, शुकर कुकर बिल्ली चूहा जितना भी पशु पक्षी जोनिया 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते 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 जीवात्मा थक जाता है। जब मनुष्य जन्म में आता है तो इसको इच्छा होता है, इसको होती है कि आप मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो उस समय जो प्रार्थना करते परमात्मा से, विविधा नानाविधा स्तना पे नाना प्रकार के स्तनपान किया, आहार अभिविधा भुगता नानाविधा स्तना बना, यदि जन्य प्रमच्छे हम, यदि मैं इस काल कोठे से निकल जाऊं, तत्प्रवज्य नारायणम अशुभ क्षय कर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, मैं इस काल कोठे से निकल जा करके फिर भगवान नारायण के, भगवान महेश्वर के, भगवान शंकर के शरण में जाऊं और मेरे को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यदि जन्य प्रमच्छे हम तत्प्रवज्य नारायणम अशुभ क्षय करता रहम, अशुभ ये अशुभ जो क्षय है, अशुभ को नाश करने वाला, दुख को नाश करने वाला है, ऐसे भगवान शिव के पास अथवा नारायण के पास अथवा विष्णु के शरण में जाऊंगा, मेरे को मुक्ति देता, तब भगवान उनके प्रार्थना को स्वीकार करके उसको संसार में आने के लिए रास्ता देता है। जब जिया आते हैं आने के बाद में सब भूल जाता है, यहां आने के बाद में जो से प्रतिज्ञा करके आया, कसम खा करके माता के उधर में कसम खा करके आया, वो कसम भूल जाता है, तो भूल जाता है तो संसार में फिर तो उसको प्रतिज्ञा भंग रूप जो है ना, जीव के जो प्रतिज्ञा भंग करता है, ये प्रतिज्ञा भंग को देख करके भगवान तालियां बजा करके हंसता है। कब हंसता है, जब प्रतिज्ञा भंग रूपी दोष लगता है ना जीव के, तब तालियां बजा करके हंसता है, अरे हरे जीव तू अभी तक कसम खा करके गया कि अशुभ अशुभ ग्रह कर्तारम तत्प्रबुद्धे नारायणम। आज तू हमको भूल गया, अब वही संसार में जाकर के संसारी बन करके फिर वही पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी जटर शयन करना पड़ा। तब भगवान तालियां बजा करके हंसते हैं, समझे कि नहीं? है हाय जी, तू अभी प्रतिज्ञा करके गया, आधी कसम खा करके गया, अब जा करके तू हमको बोल गया, तभी भगवान हंसता है। आनी बात, भगवान हंसता है तो भगवान रोता है कि नहीं रोता है? भगवान नहीं रोता है, रोने का कारण है कर्म। कर्म ही जिसको रुलाता है, हंसाता है। जब भगवान कोई कर्म किया ही नहीं, हंसेगा रोलेगा कहां से? कर्मणा बिध्यते जंतु विद्या से विमुच्यते। कर्म के द्वारा जीव संसार में फंसता है, कर्म के द्वारा जीव संसार में रोता है। तो अशुभ अशुभ क्षय कर्तारम, जो अशुभ कर्म करोगे तो भोगे बिना नाश नहीं होगा। अरे अशुभ क्षय कर्तारम, अशुभ माने पाप कर्म, जो पाप कर्म करेगा तो उसको रोना पड़ेगा। ये तू रमणीय चरण अभ्यास रचित रमणीय जनिमा भक्ति रन ब्राह्मण जनिमा क्षत्रिय जनिमा वैश्य जनिमा ये तू कभुय चरण अभ्यास जैसे कभुय जनिमा भक्ति रन चंडाला जनिमा शुक्र जनिमा क्या है? अच्छा कर्म का आचरण करते हैं तो अच्छा जनि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शरीर में जाते हैं, और यदि निंदित कर्म का आचरण का अभ्यास करते हैं निंदित जनि में जाते हैं, चंडाल जनि में शुक्र जनि में कुकर जनि में जाते हैं। इसीलिए ईश्वर के लिए ये सब लागू नहीं होता, लागू होता कर्म करने वाला के लिए। तो कर्म करता है वह जीव, और जीव में भी मनुष्य ही कर्म प्रधान है, उसमें भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र के अंदर ज्यादा कारण लागू होता है, याद रखना। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के वैश्य में ये कर्म का अधिकार है ना, कर्म का अधिकार शासन ने किसको दिया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दिया है, समझे कि नहीं? वो भोग जो नहीं है सब, तो इसीलिए कर्म करते हुए कर्म के फल को ईश्वर अर्पण बुद्धि से त्याग दो, वो गीता में बताया है। तो हे राजन, कौन किसान बोलता है, इसीलिए भगवान हंसता है, हंसता है रोता, तो भगवान को हंसने का मौका मत देना। क्यों हंसने का मौका कब देते हो? प्रतिज्ञा भंग करते हो, जब प्रतिज्ञा भंग करोगे तो भगवान तालियां बजा करके ठहाक मार करके हंसेगा, हा हा जी तू तो अभी कसम खा करके गया, अभी भूल गया। इसीलिए परीक्षित जब जन्म लिया ना, परीक्षित ले करके सारे तरफ देखता है, आंख फेरता है, कुआ 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 करता है। क्यों? वो रोता नहीं है, वो ढूंढता है। मेरे को माता के उधर भी गुफा में जो शंकर चक्र लेकर घूम रहा था, मेरी रक्षा कर रहा था, वो इस समय कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? जैसे परीक्षित भगवान को जन्म लेते ढूंढता रहता है, भगवान उसके बसाते रहता है, ऐसे जीव जो है परीक्षित है, परिता सर्वथा इच्छते इति परीक्षित, जो परमात्मा को जन्म लेते ही ढूंढे, जन्म लेते ही ढूंढते रहे कहाँ है, कहाँ है। मैं माता के उदय रूपी गुफा में जिनका दर्शन हुआ था और जिसके सामने आपने प्रतिज्ञा किया था, वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, वो ढूंढो। इसलिए हे राजन, ईश्वर कभी रोता नहीं, हंसता है। ये चारों प्रश्नों का उत्तर दिया, चारों प्रश्नों का उत्तर पा करके राजा प्रसन्न हो गया, आपने राज्य दे दिया। ये राजा है परमात्मा, ये राजा कौन है? परमात्मा। प्रथमात्मा ने जीवात्मा से कहा, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तुमको साम्राज्य मिलेगा। साम्राज्य मिलेगा माने जदगत्वान निवर्तनते तद्धाम परम मम, जहां जाने के बाद में वो परम पद की प्राप्ति हो जाए, जो मेरा पद है, वो परमात्मा का पद है जिसमें भगवान रहता है। देखो भाई, हो गया कर्म। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।